आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रयागराज में आज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा स्नान जारी, 10 लाख से अधिक कल्पवासी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली में जीआईएस 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में देश विदेश के निवेशकों से करेंगे मुलाकात। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज अहमदाबाद में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया और आपसी व्यावहारिक संबंधों को सुदृढ़ करने और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। फोरम में दोनों देशों के शीर्ष औद्योगिक नेता रक्षा, एयरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधारभूत ढांचे और सतत विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विमर्श के लिए एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक निवेश गंतव्य के तौर पर भारत के प्रति बढ़ते आकर्षण का उल्लेख किया और स्थिर नीतियों तथा निरंतर आर्थिक सुधारों की चर्चा की। उन्होंने बीमा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पूर्ण रूप से खोलने, नागरिक परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी की अनुमति देने और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए कर संरचना सरल बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियामक सुधारों से भारत का आर्थिक प्रशासन अधिक भरोसेमंद और सक्षम बन गया है। प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी कंपनियों को रक्षा, ऊर्जा, विमानन, अंतरिक्ष, फिनटेक और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। प्रयागराज में आज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा स्नान चल रहा है। कल्पवास के विशेष अनुष्ठान के समापन के प्रतीक इस स्नान का विशेष महत्व है। इस वर्ष इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल होंगे। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा तक प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से 1000 साल की तपस्या का फल मिलता है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि
आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। आप देख रहे होंगे कि इस बार मेले में अप्रत्याशित भीड़ आई है और लोगों का अनवरत स्नान का कर्म है वो जारी है। समस्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जैसे हम लोग इसमें जो घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं, पानी जो है वो समुचित मेंटेन है और इसके अतिरिक्त वॉश टावर्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जैसी व्यवस्था हर स्नान पे हम लोग करते हैं वो है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डायवर्जन स्कीम है वो लागू है, जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है और लोगों से निवेदन किया जाएगा कि जो निर्धारित स्थान जो पुलिस और प्रशासन तय करेगा बताएगा उसमें स्नान करें और हम लोगों का सहयोग करें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर विशेष यातायात व्यवस्था के साथ ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ मेला 13 जनवरी को आरंभ हुआ है। अब तक 46 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली के ताजमहल होटल में इन्वेस्ट MPGIS 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में देश विदेश के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग और इंटरैक्टिव राउंड टेबल कर आगामी ग्लोबल समिट के नवाचारों से अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ करेंगे। समिट के दूसरे दिन समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। अगले दिन 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। नई दिल्ली में आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेशकों के साथ रूबरू होकर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और सरकार की औद्योगिक नीतियों व प्रतिबद्धता से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री माधव कृष्ण सिंघानिया चेयरमैन CII नॉर्दर्न रीजन एवं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO JK सीमेंट के स्वागत संबोधन से होगी। इसके बाद इन्वेस्ट MPGIS 2025 पर विशेष कर्टन रेजर वीडियो की प्रस्तुति दी जाएगी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की प्रमुख झलकियों को दर्शाएगा। कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण इंटरेक्टिव राउंड टेबल भी आयोजित की जाएंगी। पहली राउंड टेबल मीटिंग में टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि और दूसरी राउंड टेबल मीटिंग में विभिन्न देशों के राजदूत शामिल होंगे। इसमें निवेश और साझेदारी की नई संभावनाओं पर चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में विभिन्न विभागों की विभागीय कार्ययोजना एवं उससे जुड़े वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय कार्ययोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में विभागों को जारी किए गए बजट में वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए शत प्रतिशत बजट का उपयोग सुनिश्चित करें। नए वित्तीय वर्ष के बजट में योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं। सभी विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य समय सीमा में पूरा करें, जिससे विकास कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दिए कि वे आयुष्मान निरामय योजना की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के प्रकरणों में तत्परता और सजगता से कार्रवाई की जाए। सभी पात्र व्यक्तियों के तेजी से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। आज संत रविदास जयंती है। भारतीय संस्कृति में संतों ने समय समय पर समाज को नई दिशा दी है, उसके उत्थान के लिए कार्य किया और एक न्याय संगत व्यवस्था का संदेश दिया। संत रविदास जी भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने समानता, श्रम की प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी। उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही गहरी है जितनी कि उनके समय में थी। संत रविदास जी 15वीं-16वीं शताब्दी के एक महान संत, समाज सुधारक और कवि थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उनकी शिक्षाएं भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी और उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाते हुए समानता और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच दोपहर बाद 1:30 से शुरू होगा। भारतीय टीम पहले ही श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। कप्तान रोहित शर्मा ने कटक में पिछले मैच में शतक लगाया था। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पीठ में चोट के चलते आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कल रात में कहा कि हर्षित राणा को बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को यशस्वी जायसवाल के स्थान पर टीम में जगह दी गई है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ चैंपियंस ट्रॉफी अभियान की शुरुआत करेगी। 23 फरवरी को भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। भारत ग्रुप ए का अपना अंतिम मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल महापरिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजय मनोहर तिवारी को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का कुलगुरु नियुक्त किया है। मुरैना में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत आयोजित बैठक में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने जिले में औद्योगिक निवेश किए जाने के संभावित प्रस्तावों पर चर्चा की। रीवा में महाकुंभ तीर्थयात्रियों से अधिक दाम लेने वाले होटलों को कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सील कर दिया है। रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में छात्र छात्राओं से परीक्षा को लेकर संवाद किया। श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की बैठक में आंगनवाड़ियों को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। पन्ना में आगामी 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी और खंडवा में पुलिस विभाग द्वारा साइबर जागरूकता अभियान में सेफ क्लिक अभियान के समापन दिवस पर जनसंवाद का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रयागराज में आज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा स्नान जारी, 10 लाख से अधिक कल्पवासी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली में जीआईएस 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में देश विदेश के निवेशकों से करेंगे मुलाकात। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज अहमदाबाद में। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।